من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے مطابق اس میں روزے اور تلاوت اور دعائیں، ذکر اور صدقات، دوسروں کے لیے سحر و افطار کا نظم اور ایسے نہ جانے کتنے خیر اور خیرات کے کام ہیں جن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہمیں اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ہے، اور عمل سے یہ شکر ہے کہ جو نیکی کی تھی اس نیکی کو جاری رکھیں، آئندہ بھی جاری رکھیں. کہا گیا ہے کہ کسی نیک عمل کے مقبول ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے قبول ہو جانے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے. انسان نیکی کے بعد پھر نیکی ہی کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے تو بہت کیا، ماشاءاللہ آج کا کام تو ہم نے کر دیا، یا آج جمعے کا کام کر لیا اب ہفتے بھر آزاد ہیں، یا رمضان کا کام کر لیا اس کے بعد آزاد ہیں، یا حج میں جو ضروری اعمال تھے وہ ہم نے اچھی طرح ادا کر لیے اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے. یہ آزاد ہونے کا تصور اسلام میں نہیں. اس لیے کہا گیا کہ جمعہ معیار ہے، جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے. اگر ہفتے کے دوسرے دنوں میں، جمعہ گزرنے کے بعد دوسرے دنوں میں ہمارے اندر اچھی توفیق اور اچھا عمل ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جمعے کو درست بنانا چاہیے. جمعے کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ، سورہ کہف کی تلاوت، جمعے میں جلدی آنے کا اہتمام، اور جتنے بھی اعمال جمعے کے دن بتائے گئے، جمعے کو ہفتے کے لیے ایک معیار بنا دیا گیا ہے کہ انسان اپنا جائزہ زیادہ تر جمعے کے اعمال سے لیتا رہے. اور رمضان کا مہینہ یہ پورے سال کے لیے ایک معیار ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے پھر اس کے لیے رمضان کے بعد بھی کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس کا حج اچھا گزرتا ہے اس کے لیے پوری زندگی نیکی کرنا اور کام، اچھے کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہمارے عمل میں کیا وہ لذت، وہ حلاوت، وہ لطف اور وہ مزہ جو عبادت میں ہمیں آنے لگا تھا وہ باقی ہے یا ختم ہو رہا ہے، یا ایک ایسا احساس ہے کہ اتنی محنت کی، اتنا مجاہدہ کیا، اتنے بھوکے رہے، رات میں کھڑے رہے اور بہت کر لیا، کافی کر لیا، اب کچھ سنتیں بھی چھوٹنے لگیں، کچھ یہ کہ مسجد میں ہم نے تو اعتکاف بھی کیا اور کافی وقت، لمبا وقت مسجد میں گزارا، تو اب ایک دو نمازیں گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ تقسیم ہم کر لیں خود سے عید کے دن سے ہی، یا اس قسم کے جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں باتیں آتی ہیں اور एहसास दिलाता है कि और कितना करना है, बहुत किया तुमने। तो इंसान को हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद रखना चाहिए कि जब आपकी इबादतें इतनी ज़्यादा होती थीं कि तहज्जुद पढ़ते थे और पैरों पे वर्म पड़ जाता था, पैर फूल जाते थे, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब पूछती हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके अगले पिछले गुनाह सब अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं, आपको मासूम बनाया गया है, तो फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। तो असल यही ये हमारा मोटो होना चाहिए ज़िंदगी का, हम अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दीवारों पे ये लगा दें अफला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर ना रहूं। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहता हूं। इस बात की हर वक्त अपने ऊपर पाबंदी, अपने को याद दिलाने की कोशिश। और फिर जो कुरान करीम की ये आयत है सूरह अनआम की कि कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, अल्लाह के जितने अहकाम हैं उनकी इताअत, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, वह बिज़ाली का उमिर तो, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे बढ़कर सबसे पहले मैं इस्लाम को मानने वाला और उसकी इताअत करने वाला हूँ। ये हमारी ज़िंदगी का शियार होना चाहिए, इसे हमें लिख कर लगा लेना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए कि कहीं हमारी निगाहों से किसी वक्त ये ओझल ना हो जाए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। और अल्लाह हय्यु क़य्यूम है, वो ज़ुलजलाल वल इकराम है, रब्बुस समावाती वल अर्ज़ है, खालिक़े कौन मका है, रब्बे ज़ुलजलाल है, उसका जलाल व जमाल, उसकी अज़मत व हैबत, उसकी कुदरत और किब्रियाई और उसकी जितनी भी सिफ़ात हैं वो सिर्फ रमज़ान में नहीं होती, रमज़ान में अल्लाह की तरफ से बढ़ा दी जाती हैं नेमतें और रहमतें, लेकिन अल्लाह की रहमतें और अल्लाह का करम और उसकी दरिया दिली किसी हद पर जाकर नहीं रुकती। तो हमें भी यही तालीम दी गई है कि आपकी भी कोई इबादत, आपका भी कोई काम किसी हद पर जाकर न रुके, वो जारी रहे। कुरान मजीद में फरमाया गया सूरह हिज्र के आखिर में वअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, अपने रब की बंदगी और इबादत और उसकी इताअत और उसका हुक्म मानने में लगे रहो यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, तुम्हें मौत आ जाए, मौत आने तक लगे रहो हर वक्त उसमें। इसलिए बाज़ लोगों से पूछा गया, बाज़ बुजुर्गान दीन से, कि बहुत से लोग हैं जो रमज़ान में बहुत अच्छा अमल करते हैं, बहुत नेकी के काम करते हैं, और रमज़ान गुज़रते ही फिर वो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि बिसल क़ौम क़ौमन ला यारिफ़ून अल्लाह इल्ला फ़ी रमज़ान, वो बहुत बुरे लोग हैं जो अल्लाह को सिर्फ़ रमज़ान में पहचानते हैं, अल्लाह से दोस्ती है, क़ुर्बत है, और अल्लाह ताला का तज़किरा है, उसकी बातों का दिल पर असर है, और नेक और अच्छी मजलिसों में दिल लगता है, और हम उलमा के बार बार बयानात सुनना चाहते हैं, और देखा यह जाता है कि अगर वो कम बयान करें तो गुस्सा आता है कि क्यों इतनी जल्दी बयान ख़त्म कर दिया, और क्यों नहीं ज़्यादा और किसी मौजू पर गुफ्तगू करें, ये भी बोलें वो भी बोलें, और उसके बाद फिर इतनी दूरी होती है, इतनी दूरी होती है कि फिर वो मिलना भी नहीं चाहते। ये जो दूरी होती है, जो फासले बन जाते हैं जब हम अच्छे मजलिस, अच्छे माहौल में नहीं होते हैं, कुरान मजीद के दर्स में शिरकत नहीं होती है, जुमे के बयान में भी हम ताखिर से पहुँचते हैं, जितने भी हमारी ज़िंदगी में कितने मौक़े ही आते हैं, बहुत मुख्तसर हैं, जो जितनी भी मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो शादियों में जाते हैं और बहुत सारे काम, जहाँ जहाँ मजलिसों में रहते हैं, उनमें ज़्यादातर कम मजलिसें ऐसी होती हैं जो खालिस अल्लाह की याद के लिए कायम की गई हों, और जिसमें बैठे इंसान तो इंसान को अल्लाह याद आ जाए और फिर किसी अमल की तहरीक हो जाए कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये सीखना है, हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। ये मौका तो रमज़ान में ही आता है, और जब रमज़ान में आता है तो हमें तय करना चाहिए कि हमें इसी पर ज़िंदा रहना है, नेक लोगों की सोहबत हमें इख्तियार करनी है, नेक लोगों की सोहबत से इंसान के अंदर ईमान में ताकत पैदा हो जाती है, हम महसूस नहीं करते, ताकत पैदा हो जाती है। और नेक लोगों के ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा बड़ा कोई आलिम दीन हो, बल्कि कोई अच्छा इबादत गुज़ार इंसान है, उसके साथ भी आप बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, वो सिर्फ अल्लाह का तज़किरा वो ऐसी लज्जत के साथ करता है, इतने यकीन के साथ करता है कि हम नहीं कर पाते हैं। उसका जो यकीन है अल्लाह के ऊपर, जो उसका एतमाद है, वो इतने यकीन से बात करता है। कभी आप देखेंगे कि बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान और उसके कपड़ों से बू आ रही है और हयात उसकी कुछ भी नहीं है, गुर्बत के आसार नुमाया हैं, लेकिन उसकी बात सुनिए अल्लाह के ऊपर जो उसका यकीन है, हज़ारों तकरीरें और बयान उस पर क़ुरबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसको अल्लाह पर यकीन अता फ़रमाए। ऐसे ही आप देखेंगे महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, अल्लाह ताला ने बेपनाह पैसे दिए हैं, चाहते तो वो गाफिल हो जाते लेकिन उसके बावजूद अपना सब कुछ क़ुरबान करके छोड़ कर अल्लाह के घर में आकर पढ़ रहे हैं, क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, और बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए लगा रहे हैं। आप ऐसे लोगों के पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, तो ज़मीर बेदार होता है, दिल बेदार होता है, इंसान का दिलो दिमाग जागता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। सोते हुए इंसान को बेदार करने के लिए रमज़ान बेहतरीन मौका होता है, लेकिन उसके बाद ये अमल हमारा जारी रहना चाहिए, नेक कामों को आगे जारी रखना, चेक करना कि अच्छा काम करता हूँ तो दिल को खुशी होती है या दिल को जबर होता है। अगर दिल में ऐसा लगता है कि किसी के दबाव में कर रहे हैं तो फिर ये समझना चाहिए कि कुछ कमी है इसके अंदर। दिल में खुशी होती है, नमाज़ पढ़ लेने के बाद दिल में खुशी होती है, भाई हम बैठेंगे बात करेंगे, कुछ ज़रूरी काम है, पहले हम ऐशा की नमाज़ से फ़ारिग हो जाते हैं मस्जिद में जाके बाजमात, उसके बाद देखिए मोमिन को रूहानी खुशी होती है कि अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। और बहुत सी मरतबा ये होता है कि चलिए बात हो रही है, चल रही है, अभी कर रहे हैं, बहुत सी मरतबा दीनी गुफ्तगू भी हो रही होती है, दीनी जलसे भी हो रहे होते हैं और नमाज़ पीछे चली जाती है। ये कोई दीन की अलामत नहीं है, इससे चेक करना चाहिए। जिसकी नमाज मुअख्खर हो जाए, जिसकी नमाज लेट हो जाए, जिसको अपने नमाज की परवाह ना हो, या ये हो कि कम से कम कम दर्जे पर राज़ी हो जाए कि ठीक है इस मस्जिद में नहीं तो वहाँ है ना, वहाँ 8:30 बजे है, वहाँ 9:45 बजे, वहाँ 9 बजे, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और फिर ये होगा कि नहीं भाई बात मुकम्मल नहीं हुई, ऐसा करते हैं कि और बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, जमात कर लेंगे, फिर जमात, फिर देखा ये भी वक्त नहीं भाई, लेट हो रहा, घर से फ़ोन आ रहा है तो मैं चलता हूँ, फिर अकेले अकेले पढ़ लेते। तो नमाज के मामले में हम लोग बहुत उसका जो सबसे छोटा दर्जा है उस पर राज़ी हो जाते हैं, और उस सिलसिले में जो सबसे बेहतर और सबसे आला दर्जा है कि मस्जिद में आकर जमात के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए, और एक नमाज का सवाब हर नेकी 10 गुना है, लेकिन नमाज जब आप जमात के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं तो 27 गुना सवाब मिलता है। तो इस बात का सबसे पहले हम अहद करें कि रमज़ान के ख़त्म होने के बाद से, उसके बाद भी कोई फ़र्क आने वाला नहीं है हमारी ज़िंदगी में नमाज के सिलसिले में, कि जितना भी अहम काम हो हम जमात से मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। बहुत सी मरतबा हम लोगों के पास तो इतनी रुकावटें हैं नमाज़ पढ़ने में, जमात फ़लाँ की मस्जिद है, फ़लाँ की मस्जिद है, ये इमाम है, वो इमाम है, भाई मुसलमान है, हुज़ूर सल्लम फरमाया सल्लु खल्फ कुल्ली बर्रिन व फाजिरिन, नेक के पास भी पीछे भी नमाज़ पढ़ सकते हो, फासिक फाजिर के साथ भी नमाज़ पढ़ सकते हो, जो इमामत कर रहा है मस्जिद करीब हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें। अब ये कि कोई बिल्कुल ही बदअकीदा इंसान हो हमें मालूम है तो अलग सी बात, लेकिन आम मज़े हम उसमें चेक करना है कि इस मसलक की उस मसलक की और ये फ़िरका और वो फ़िरका और उसकी वजह से नमाज को मौखर करना, ये तो ऐसा फितना है जो बहुत दिनों से फैलता चला जा रहा है, जड़ पकड़ता जा रहा है, नमाज है, रोज़े हैं, और हर तरफ ये चीज़ फैल रही है कि किस तरह से हम इस जकड़बंदियों से निकलकर खालिस मुसलमान बनेंगे। अल्लाह से हमें आखिर दिन में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें खालिस मुसलमान बना दीजिए, हमें खालिस मुसलमान अपना बंदा बना दीजिए, इसका बंदा, उस जमात के, उस फ़िरक़े के, इसके पीछे, उसके पीछे। पहला सवाल कि किस जमात से आपका ताल्लुक़ है और किस मज़हब से और मसलक से आपका ताल्लुक़ है, दीन को ज़ाय करने वाली चीज़ें। हमें काम का हुक्म दिया गया था कि मारूफ का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए, मसलक ना चेक किया जाए, ये काम सही हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, गलत हो रहा है उस पर टोका जाए, मना किया जाए, मना करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जो तरीक़ा ये इख्तियार कर लिया गया है कि हम किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, उसकी वजह से बहुत इंतशार है, और ये इंतशार हर रोज़ हर अमल में हम देखते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला पूरी मिल्लत और उम्मत की हिफाजत फरमाए। उसके साथ एक अहम मसला ये है कि जैसे ही हम ईद की नमाज़ से फारिग होंगे, उसके बाद दूसरे ही दिन से, फिर अगर हम कोशिश करें कि दूसरे ही दिन से लगातार 6 रोज़े रख लें, या कम से कम पूरे शवाल में दो दो दिन मिलाकर या एक एक दिन बांट कर पूरे शवाल के महीने में कभी भी हम 6 रोज़े मुकम्मल कर लें, बेहतर है कि लगातार हम 6 रोज़े रख लें। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शवाल काना कस्याम अद्दहरी कुल्ले, जिसने रमज़ान के रोज़े मुकम्मल किए और उसके बाद 6 रोज़े रख लिए तो ऐसे जैसे कि पूरी उम्र रोज़ा रखा। और उसकी तशरीह इमाम नववी रहमतुल्लाह ने की कि पूरी उम्र का मतलब है पूरा साल, चूँकि फिर अगला रमज़ान आएगा तो फिर आइंदा एक रमज़ान के लिए बात कही गई, पूरा ज़माना, दहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उसने पूरा ज़माना रोज़ा रखा। और उसकी तशरीह इस तरह की कि हर अमल का सवाब 10 गुना होता है, तो अगर हम 30 रोज़े रखते हैं तो हमें 300 रोज़ों का सवाब मिला और 6 रोज़े रखते हैं तो 60 रोज़े का सवाब मिला, तो 365 दिन इस तरह हो गए और पूरे साल का गोया हमने रोज़ा रख लिया। तो इसलिए ये भी बहुत मुबारक अमल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। और इससे भी हम अपने रोज़े के बारे में चेक कर सकते हैं कि कहीं रोज़े से तो हम भाग नहीं रहे हैं और बहुत परेशान हो गए हैं रोज़ा रख के कि बस जल्दी से ख़त्म हो और किसी तरह से फिर हम आज़ाद हो, तो उसके बाद हम नफली रोज़ा रखने के लिए भी तैयार हों, बल्कि हमारा दिल और हमारा जिस्म इस तरह तैयार हो गया हो कि अब रोज़ा रखना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, अब मौसम भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से हम रोज़ा रखने के लिए अहल हैं। हम अपने रोज़े को इससे भी चेक कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने बड़े दर्जे में इसे कबूल कर लिया हो तो हमारे लिए सित्ते शव्वाल का रोज़ा रखना और आसान हो। फरमाया गया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं उन लोगों का अमल जो तकवे वाले हैं। अगर बग़ैर तकवे के किया गया है, बग़ैर अल्लाह की को राज़ी करने की नीयत के किया गया है बहुत से काम, फिर अल्लाह के यहाँ वो काम मकबूल नहीं है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला कबूल करते हैं, जब हाबिल और काबिल का झगड़ा हुआ और गुस्सा आया काबिल को कि तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल हो गई, मेरी क्यों नहीं कबूल हुई, तो उसने कहा भाई मैं क्या करूँ, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तकवे वालों की बात कबूल करते हैं, उनका काम कबूल करते हैं। आप अल्लाह से डर कर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तकवे वालों में शामिल फरमाए और हमारा अमल कबूल हुआ हो, और उसके बाद दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं और हमारे सारे अमाल कबूल फरमाए। उसके साथ एक बहुत अहम चीज़ ये है कि ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी गोया मोमिन का रोज़ा होता है। ये रोज़ा जो हमारा शुरू होता है सहर के वक्त से और ख़त्म होता है इफ्तार पर, और ये रोज़ा हम अपनी अच्छी लजीज़ ग़िज़ाओं से शुरू करते हैं और उन चीज़ों की भी तलाफ़ी करते हैं जो दिन भर खा पी नहीं पाते हैं, तो इस कदर अच्छी तरह अहतमाम करते हैं कि वो उसमें कोई कमी ना रह जाए, और हम उन डिशेज़ के नाम नहीं लेना चाहते हैं जिनका हम अहतमाम करते हैं कि कहीं मुँह में पानी ना आने लगे, लेकिन कितना अहतमाम सहरी के मौके से अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ में भी इतना अच्छा इंतज़ाम होने लगा है कि किसी कुर्बानी की और किसी तक, कभी हो सकता है घर में ऊँच नीच हो जाए लेकिन एतिकाफ़ में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो ये सब हमें मिला। फिर हम जब इफ्तार कर रहे हैं उस वक्त भी तरह तरह की लजीज ग़िज़ाएँ हैं और अहतमाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ये रोज़ा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो जाता है। मोमिन का असल रोज़ा वो है कि जैसे ही वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ और बालिग हुआ उसी वक्त से उसका रोज़ा शुरू हो गया। जब रोज़े के माने हैं रुकना, किसी चीज़ से रुकना, तो मोमिन जब अल्लाह के पास जो देखेगा कि कितनी नेमतें उसको मिलने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी अल्लाह की शान और उसका इकराम, तो वो चाहेगा कि मैं पैदा होने से लेकर मौत तक मुस्तकिल में इबादत में लगा रहता, और अगर कोई लगा होगा तो उस दिन जाकर वो कम समझेगा कि मैंने बहुत कम किया, इससे ज़्यादा मुझे करना चाहिए था, उस दिन उसको बहुत हकीर मालूम होगी। ये इमाम मुस्नद अहमद की रिवायत भी है और हसन दर्जे की रिवायत है कि इंसान अगर पूरी ज़िंदगी इबादत कर ले और उस दिन जब पहुँचेगा और अल्लाह के इनाम और इकराम को देखेगा और फ़र्क देखेगा जन्नत के मरतबे में, लहक्करहु यौमल क़ियामा, तो अपने अमल को हकीर जानेगा कि कुछ और कर लिया होता हमने। इसी तरह सूरह मुद्दसिर में फरमा वाला तमनुन तस्तकसिर, किसी पर एहसान करो तो एहसान जताने के लिए, उसको ज़्यादा समझते हुए मत करो कि मैंने बहुत कर दिया, बल्कि एहसास ही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही अल्लाह के लिए इबादत करो तो उसे ज़्यादा मत समझो, समझो कि मैंने बहुत थोड़ा सा अमल किया है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद में नक़ब, औसानी बिस सलाती वज़्ज़का مادم تو حیہ, مجھے نماز اور زکوٰۃ کی اللہ نے وصیت کی, اس کا حکم دیا, جب تک میں زندہ رہوں پوری زندگی میری اس کے لیے وقف ہے اور قربان ہے. تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ جو ہم نے روزہ شروع کیا تھا مسلمان بن کر, مسلمان ہونا گویا روزے دار ہونا ہے, مسلمان معاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں فلاں فلاں کام نہیں کروں گا, یہ کام بھی نہیں کروں گا, اسے بھی چھوڑوں گا, اسے بھی چھوڑوں گا, صرف آپ کے لیے چھوڑوں گا, آپ کے حکم کے لیے چھوڑوں گا. اور جن کاموں کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھوڑنا واجب اور لازم تھا, جو حرام تھی ان کو تو چھوڑا ہی, جو بہتر نہیں تھی خلاف اولا تھی, کر بھی سکتے تھے نہیں بھی کر سکتے تھے, نہیں کرنا زیادہ بہتر تھا, ان کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اس پر قائم رہنا کہ میں اس کو جیسے رمضان میں چھوڑ رہا ہوں آئندہ بھی پوری زندگی چھوڑوں گا, اس لیے کہ میں رمضانی نہیں ہوں, میں مسلم ہوں, میں مسلمان ہوں, میرا نام کوئی رمضان یا رمضانی نہیں ہے, میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں, میں پوری زندگی کے لیے مسلمان ہوں. تو اپنی زندگی کو ایک خالص مسلمان کی طرح پوری توجہ اور نیت کے ساتھ گزارنا, جیسے رمضان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے, نظر اٹھ جائے کہیں غلط طرف یا پانی کی طرف ہاتھ چلا جائے, یا کوئی ایسی جو آدمی فوراً ٹھہر جاتا ہے, کانپ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس کو جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, میں اپنی زبان غلط نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو یہی ایک مسلمان کا پوری زندگی کا دستور ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا ہوں, آپ سے کوئی غلط معاملہ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑا اماؤنٹ ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کام کریں, لیکن میرے حکم اللہ کے حکم کے اعتبار سے یہ رشوت ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. بہت بڑے انٹرسٹ کی رقم ہے, کچھ بھی ہو, یہ سود ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اس بات کا ہر وقت استحضار, آپ مجھے دینے کے لیے تیار ہیں, بہت پیسے دے رہے ہیں, آپ دیتے ہوں گے, آپ کے یہاں ہوگا, میں لڑکی والوں سے سامان نہیں لیتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں لڑکی والوں پہ فورس کر کے دعوت کے لیے نہیں کہتا ہوں, اب میرا ضمیر اس کو گوارا نہیں کر رہا, اس لیے مت کیجیے آپ, میں اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں. تو اس قسم سے جو زندگی کے رسم و رواج اور دستور ہیں, میرا ضمیر مجھے اندر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ اصل وہ سحری ہے جو ہوئی تھی جس وقت ہم مسلمان ہوئے تھے اور بالغ ہوئے تھے. اور روزہ ہوگا جس میں یہ ڈشز نہیں ہوں گی, روحوں و ریحانوں و جنت و نعیم, وہ فاکہتوں و رمان و عناب, وہ انار اور میوے اور جنت کی بے شمار نعمتیں, و حور مقصورات فی الخیام, اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے, اور محبوب خدا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کے ذریعے سے وہ افطار ہوگا, جو ایک مسلمان کا افطار ہوگا. اور وہی اصل افطار ہے جس افطار کے لیے ایک مسلمان پوری زندگی انتظار کرتا ہے. اور لوگ تو اس کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار تھے, اور دی ہیں جانیں لوگوں نے, بڑوں نے نہیں بلکہ بچوں نے دی ہیں. غزوہ بدر کے موقع سے ایک بچہ آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے ابھی بدر میں شریک ہونے کی, اور اللہ کے راستے میں جو قربانی ہے اس میں شریک ہونے کی. کہتے ہیں نہیں میں لڑ سکتا ہوں, میں قربانی دے سکتا ہوں. کہا کہ نہیں, پھر ان کو لے لیا گیا تو دوسرے آئے کہ میں بھی کر سکتا ہوں, مجھے کشتی لڑا کے دیکھ لیجئے, میں ان کو ہرا دوں گا. اور کشتی ہوئی, انہوں نے ہرا لیا, دونوں کو لینا پڑا. ابو جہل کہاں ہے پوچھ رہے ہیں معاذ معوذ بن عفرہ, ابو جہل کہاں ہے بتائیے, دشمن رسول کو میں ختم کر دوں گا. اور واقعی انہوں نے ختم کر کے دکھایا. عبد الرحمن بن عوف سے جان دینے کو لوگ تیار تھے, عمیر بن حمام انصاری کھڑے ہوئے غزوہ بدر میں, اللہ کے لیے اگر مرنا ہے پھر انتظار کس بات کا ہے. کہا اگر یہ کھجوریں جو ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں اگر یہ کھا کر ختم کروں گا, انہا لحیات طویلہ, زندگی بہت بڑی ہو جائے گی, مجھے اتنی بڑی زندگی نہیں چاہیے, مجھے وہ جنت نظر آ رہی ہے جو میرا اصل ٹارگٹ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لڑنے بھڑنے کو کوئی نہیں بتایا گیا کہ دین ہے, یہ ایک اس کا نمونہ ہے. جب اللہ کے دین کے لیے جان دینے کی بھی ضرورت پڑی تو لوگوں نے جان بھی دی ہے. ہمیں اللہ سے ملاقات کا ایک شوق دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے, اسے باقی رکھنا چاہیے, اسے کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے کہیں سے. وہ جنت کے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ جب کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہی نہیں, کسی کان نے وہ سنا ہی نہیں, دل پر اس کا خیال ہی نہیں گزر سکتا ہے کہ وہ کیسی جنت ہے. اس کا انتظار, اس کا شوق. اللہم بالرفیق الاعلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیتاب ہو کر فرماتے تھے کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دیجئے, جو سب سے بہتر مہربان اور رب ہے اس سے ملا دیجیے, اس سے ملنے کا اشتیاق. انسان دعا نہ کرے موت کی, لیکن موت تو آنی ہے, اس موت کے لیے ایسی تیاری, ایسا دھیان, ایک ایک عمل کو چیک کرنا, ایک ایک عمل کو بار بار چیک کرنا, زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ہوں, زندگی خوشی میں ہو, غم میں ہو, بے چینی میں ہو, پریشانی میں ہو, آزمائش میں ہو, کسی بھی حال میں ہو, اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے, ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہو ہوا کرے, لیکن اللہ کے حکم کے لیے انسان بیتاب ہو جائے, کیسے ہم اس پر عمل کر, اور نہ ہو سکے تو اتنا رنج جیسے کہ گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو کہ آج یہ عمل ہم سے چھوٹ گیا, یہ کام نہیں ہو سکا, یہ بھی کر سکتے تھے, یہ بھی کر سکتے تھے, یہ رخصت کا راستہ تھا, یہ عزیمت کا راستہ تھا, لیکن ہم نے عزیمت والا کام نہیں کیا, ہلکے درجے کا چھوٹا کام کر لیا, اور دنیا کے معاملے میں ہم بڑے درجے کا کام چاہتے ہیں, اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں, اس پر دل میں رنج پیدا ہو کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, اور پھر اللہ سے دعا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر لگا دیجئے. اس احساس کے ساتھ ہمیں رمضان سے رخصت ہونا چاہیے, اور رمضان ہمیں رخصت کر رہا ہو کہ والذین آت یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, جو اللہ نے اللہ کے لیے دے سکتے تھے دیا, اور دل اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں حساب دینا ہے. اس لیے جو بھی ضروری اعمال ہیں, صدقہ فطر وغیرہ ہیں جو عید سے پہلے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے, اس کے مسائل بھی بیان کیے گئے, 2.25 کلو گیہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ 3.5 کلو گیہوں, اور استطاعت دی ہے تو کشمش اور کھجور کے اعتبار سے نکالیں, جس کی تفصیلی بحث ہم نے پچھلے جمعہ میں کی تھی, اور جو ضروری احکام ہیں, عید کی نماز کا طریقہ ہے کہ جس ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا, یہ بھی مسنون عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں راستوں کے فرشتے لکھیں, پھر اپنے پاس جو بہتر سے بہتر کپڑے ہیں انہیں پہننا, نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے فرض اور واجب کے درجے میں, بہرحال نئے کپڑے پہن لینا اور عطر لگانا اور مسواک کرنا اور عید کے لیے غسل کرنا, یہ سب اس کی مسنون اس کے اعمال ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہاں مسجد میں حاضر ہوں, اور اس مسجد میں عید کی نماز انشاءاللہ عید الفطر کی 8 بجے ہوگی, اسی کے مطابق پہلے آنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازیں. آمین.